سعيد المصطفى الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب کہ جو چیزیں جو شرابیں عقل کو چھپا دیتی ہیں شریعت میں وہ خمر ہی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے یہ بات ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ عام طور پر خمر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جو انگور سے بنائی جاتی ہے جو سخت حرام ہے، لیکن اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ صرف انگور سے بنائی جانے والی شراب کو خمر نہیں کہیں گے، بلکہ جس چیز سے نشہ جو ہے نا پیدا ہو جائے تو وہ شریعت کے اصطلاح میں خمر ہی ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بھائی گزشتہ اسباق میں گزشتہ جلوس کے اندر ایک کنفیوژن ہو گیا کہ کسی وقت الکحل کو جو ہے نا جائز بتایا گیا، کسی وقت شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، تو اصل نوعیت کیا ہے اس کی، کب جائز ہیں کب ناجائز ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ ایک ہے شراب جو پینے کے لیے بنائی جاتی ہے، جو نشے کے لیے بنائی جاتی ہے، جو باضابطہ بازاروں میں ملتی بھی ہے، اس کا مقصد ہی نشہ کرنا ہوتا ہے، لہو و لعب ہوتا ہے، تو وہ نہ زیادہ مقدار میں پینا جائز ہے نہ کم مقدار میں پینا جائے، وہ حرام ہے صرف۔ اب وہ انگور سے بنائی جائے، کھجور سے بنائی جائے، کشمش سے بنائی جائے، کسی اور چیز سے بنائی جائے، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز سے بنائی جائے، شراب شراب ہے جو نشے کے لیے بنائی جاتی ہے وہ حرام ہے۔ دوسری صورت ہے الکحل بنانے کی، کہ اس میں بھی نسبتاً نشہ پایا جاتا ہے لیکن اس کا مقصد پینا نہیں ہوتا، یہ استعمال کیا جاتا ہے چیزوں کے اندر ضرورت کی وجہ سے۔ عام طور پر جس سے متعلق یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ بھئی یہ مختلف مقاصد کے لیے چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، دواؤں میں استعمال ہوتا ہے، غذاؤں میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے، معقولات میں بھی، مشروبات میں بھی، ہر چیز میں۔ تو یہ جو الکحل ہوتا ہے یہ ضرورت کی وجہ سے ملایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ابتلاء عام ہے، اس کے اندر جو ہے ایسا لوگ ایسے مبتلا ہیں کہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ کتنی چیزوں کو ہم یعنی استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، پھر باہر سے کوئی چیز خریدنا ہمارے لیے انتہائی مشکل، کوئی دوا خریدنا ہمارے لیے انتہائی مشکل۔ تو یہ جو الکحل ہے یہ ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، اب یہ کھائی جانے والی چیزوں میں ملائی جائے، پی جانے والی چیزوں میں ملائی جائے، لیکن شرط یہی ہے کہ انگور اور کھجور سے بنا ہوا نہ ہو، کشمش انگور کھجور وغیرہ سے۔ تو یہ تفصیل ہے کہ شراب وہ تو پینے کے لیے ہی بنائی جاتی ہے، وہ حرام ہے، الکحل پینے کے لیے نہیں بنایا جاتا۔ یعنی یہ اور بات ہے کہ یہاں پر الکحل کا استعمال دونوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو فرق ہے وہ اس معنی کا فرق ہے کہ جو الکحل چیزوں میں ملایا جاتا ہے، چیزوں کی عبادت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، تو وہ جو ہے ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، وہاں فی نفسی الکحل نہیں، وہ چیز جائز ہے اصل میں جس میں یہ ملایا گیا ہے، ضرورت جو ہے نا وہ بھی شامل کر دیا گیا تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ تو بہرحال یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کر رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں خطب عمر علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ دیا، فقال اور فرمایا انہ قد نزل تحریم الخمر، کہ شراب کی حرمت جو ہے نا وہ نازل ہو چکی ہے، خمر کی حرمت نازل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہی من خمسۃ اشیاء، اور یہ جو خمر ہے یہ پانچ چیزوں سے بنتا ہے۔ فرمایا کہ العنب والتمر والحنطہ والشعیر والعسل، انگور سے، کھجور سے، جو سے اور شہد سے، ان پانچ چیزیں، چونکہ اس زمانے میں عام طور پر یہ پانچ چیزیں ہی استعمال کی جاتی تھی، اسی کی شراب بنائی جاتی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ بھائی یہ خمر اس سے بنایا گیا ہے، یہ حرام ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ضابطہ بیان فرما دیا کہ والخمر ما خامر العقل، خمر وہی ہے جو عقل کو جو ہے نا بالکل چھپا دے، عقل کو زائل کر دے، انسان میں نشہ پیدا کر دے۔ तो इससे इमाम बुखारी ये बताना चाहते हैं कि भाई सारी चीज़ें जो नशा पैदा करने वाली हैं शरीयत की नज़र में वो खमरें हैं, उससे बचना ज़रूरी है, जो शराबें हैं उनसे बचना ज़रूरी है। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वसलातदुन वलिद्दु अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम युफारिक़ना हत्ता यअहद इलैना अहदा अलजद्दु वलखलालतु वअबवाबु मिन अबवाबि रिबा। मेरी ख्वाहिश थी या मैं पसंद करता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा न होते, यहाँ तक कि हमारे सामने वाज़ह कर देते तीन मसाइल। एक मसला है जद्दुन का, दादा का, और एक मसला है कलाला का, और रिबा से मुतालिक मसाइल। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तीन मसाइल के सिलसिले में ये फरमाया कि भाई इनके बारे में मुझे तरद्दुद होता है फैसले करने में और शरीयत के अहकाम को बयान करने में। तो अगर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें मज़ीद तफसीलात बयान फरमा देते तो हमारे लिए सरेसर हो जाता, इत्मीनान हो जाता। तो ये हज़रत उमर अपने तौर पर बात नकल कर रहे हैं, वरना तो हुज़ूर तो ज़ाहिर सी बात है कि शरीयत के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की जो मसलहत थी जितना हुज़ूर को बयान करना था वो तो आपने बयान फरमा दिया। तीन मसाइल क्या हैं? एक मसला तो है इसमें दादा से मुतालिक, यानी अगर किसी आदमी का इंतकाल हो जाए वारिसिन में सिर्फ उसका दादा मौजूद हो और भाई वगैरह मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में ये जो भाई होते हैं तो वो जो है ना मीरास पाएंगे नहीं पाएंगे, ये मसला होता है। इसमें इस मसले में सहाबा इकराम से शुरू ही से इख्तलाफ रहा है, सहाबा इकराम के बाद अइम्मे इकराम में भी इख्तलाफ रहा है कि दादा की वजह से भाई बहन मीरास पाते हैं या महरूम होते हैं। तो हमारा मौकफ़ तो इस सिलसिले में यही है कि दादा की मौजूदगी में भाई बहन मीरास नहीं पाते, महरूम हो जाते हैं। जब आदमी के बेटे बेटी बेटे मौजूद हो या इसी तरीके पर बाप या दादा मौजूद हो मीरास पूरी की पूरी इन्हीं को चली जाती है, भाई वगैरह को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर दादा के बारे में एक तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौकफ़ यही है कि दादा मौजूद है और भाई मौजूद है तो दादा को मीरास मिलेगी, भाई बहन वगैरह महरूम हो जाएंगे। बाद साहब इकराम का मौकफ़ यही है कि नहीं, दादा को भी मीरास मिलेगी, भाई बहनों को भी मीरास मिलेगी। अब उसकी कई सूरतें हैं। अब वो सूरतें ये हैं कि भाई दादा को, एक तो ये है कि भाई दादा को भाई भाई मानकर भाइयों की तरह मीरास तकसीम की जाए, एक शक्ल तो ये है। दूसरी शक्ल ये है कि दादा को यानी भाई मानने की सूरत में ज़्यादा मिल रहा हो तो वो दिया जाएगा, या दादा को जो है ना 1/6 यानी पूरे माल का छठा हिस्सा देने की सूरत में ज़्यादा मिल रहा हो तो वो दिया जाएगा। एक सूरत यह है कि दादा को तीन सूरतों में इख्तियार दिया जाता है। इतनी सूरतें हैं, बाज़ ताबईन कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमने 70 मरतबा दादा के मसाइल के सिलसिले में मसले मैंने महफूज किए, याद किए, हर मरतबा अलग मसला उन्होंने बताया, इतनी तफसीलात। तो इसलिए फरमाते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दादा के मसाइल के बारे में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद जो है ना वजाहत फरमा देते तो हमारे लिए इत्मीनान हो जाता। हज़रत उमर की वैसे ही फहम फिरासत बहुत ज़्यादा और जाहिल बहुत ज़्यादा था, और फिर उनका मसला तो ऐसा था कि उनकी जो ख्वाहिश होती थी अल्लाह तबारक व तआला कई मौके पर उनके इरादे की बुनियाद पर पुरानी आयत नाज़िल फरमा दी। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने किताब लिखी है बादाब्ता इसी उनवान से, और लिखा है कि 21 आयत 21 मौके ऐसे हैं कि जहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मंशा था कि ये काम हो जाए, या अल्लाह के नबी से उन्होंने दरख्वास्त कर दी कि या रसूल अल्लाह अगर ये हुक्म आ जाता तो अच्छा था, अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी। कुरान पाक में कई आयतें हैं ऐसी हिजाब से मुतालिक मसाइल उनके बारे में नाज़िल हुए। ग़ज़वा बदर है, उस मौके पर उनका मंशा यह था कि ग़ज़वा बदर में जो काफिर पकड़े गए हैं कैदी बना लिए गए हैं उनको कत्ल कर दिया जाए और उनको फ़िदिया लेकर छोड़ा ना जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िदिया लेकर छोड़ दिया क्योंकि हज़रत अबू बकर की और दीगर सहाबा की राय हुई थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमा दी, माकान नबी के अय पूरे लघु असरा ताइफ़ना फ़िल अर्ज़, आपने इन कैदियों को जो है ना छोड़ा क्यों, जाने के बाद ज़मीन में फसाद मचाएंगे, इनको कत्ल कर देना चाहिए था। ऐसे ही अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल का जब इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे आए वो मुसलमान थे, दरख्वास्त कर दी अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के रसूल आप जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, अपना कुर्ता इनायत फरमाइए। तो हुज़ूर चले गए, हज़रत उमर फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह वो काफिर है, उनके कब्र पर मत ठहरिए, आप उनकी नमाज़ आप मत पढ़ाइए। तो लेकिन हुज़ूर शफ़क़त की वजह से, मोहब्बत की वजह से, और इस वजह से कि भाई उनके कबीले के हज़ारों लोग मुसलमान हो सकते हैं, बहरहाल उसमें भी अल्लाह पाक की हिकमतें और मसलहतें हैं, वो भी अल्लाह तबारक व तआला को करवाना मंजूर और मकसूद था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ा दी तो अल्लाह पाक ने सूरह तौबा के अंदर वो आयत नाज़िल फरमाई है कि ऐ नबी आप ला तक़ुम अला क़ब्री, कभी जो है ना आप दोबारा इन काफिरों की कब्रों पर मत ठहरिए। और आगे और भी अहकाम हैं उस बारे में, इस्तग़फिर लहुम अव ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तफिल्लहुम 70 मरतन फलन यगफिर अल्लाह लहुम। ए नबी, ऐसे काफिरीन और मुनाफिकीन के लिए अगर आप 70 मरतबा भी इस्तगफार तलब करेंगे तो भी जो है उनकी बख्शिश होने वाली नहीं है, ये तो काफिर हैं, अल्लाह पर ईमान लाने वाली नहीं है। तो बहुत से मौके ऐसे हैं जहाँ हजरत उमर की ख्वाहिश होती थी, अल्लाह तबारक व तआला का फैसला आ जाता था। तो फरमाते, तो फहमो फिरासत उनकी, उनका इल्म अपनी जगह है, लेकिन बाद मसाइल में इत्मीनान उनको नहीं हुआ। इस वजह से सहाबा इकराम में इख्तलाफ भी रहा है बहुत ज़्यादा। उनमें से एक मसला ये भी रहा है कि वो चाहते थे कि इन मसाइल की मज़ीद वजाहत हो जाती दादा और भाइयों से मुतालिक मीरास की तकसीम के सिलसिले में। दूसरा मसला फरमाया कि कलाला के बारे में भी अगर मज़ीद और वजाहत आ जाती शरीय अहकाम के अंदर तो हमारे लिए सहूलत हो जाती। कलाला असल में उस शख्स को कहते हैं कि जिसके वालिद, यानी वो शख्स जिसका इंतकाल हो जाए और बेटा और बाप कोई भी मौजूद ना हो, भाई बहन वगैरह मौजूद हैं, तो इसके मसाइल में भी दरी पेची दिया है। तो हज़रत उमर ने उसके ख्वाहिश जाहिर फरमाई कि अगर अल्लाह के नबी इस मसले की वजाहत फरमा देते तो ये भी अच्छा होता। ये कलाला कहते किसे हैं, इसमें भी बहुत सारा इख्तलाफ है उलमाए किराम के, मुफस्सिरीन का और सहाबा किराम का, मुख्तलिफ आ रहा है इस सिलसिले में। लेकिन राजह तफसीर हमारे पास वही है कि कलाला असल में उस मैयत को कहते हैं कि जिसका वालिद भी ना हो, जिसके बेटे भी ना हो, और इंतकाल हो जाए, भाई बहन हो, तो उनमें मीरास की तकसीम कैसे होगी। तीसरा मसला है रिबा से मुताल्लिक। हज़रत ने फरमाया कि भाई ये जो सूद के मसाइल हैं, सूद के मसाइल के सिलसिले में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद वजाहत फरमा देते तो अच्छा था। तो इस ये मसाइल भी बड़े नाजुक हैं। सूद की अकसाम है, एक किस्म है एक रिबा, रिबा नसिया कहलाता है, और एक होता है रिबल फजल। रिबा नसिया ये बिलतफाक़ हराम है, रिबा नसिया जिसको हम कहते हैं ये बिलतफाक़ जो है ना हराम है। इसमें होता यह है कि आदमी कोई कर्ज लेता है और कर्ज वापस करना होता है तो कितनी ताखिर होती रहती है, तो ताखिर होने की वजह से सूद लेता रहता है मुस्तकिल तौर पर, ये हराम है। बिना आवज आदमी जो है ना कर्ज की बुनियाद पर नफ़ा लेते रहता है ताखिर की वजह से, इतना ताखिर होती गई उसके ऊपर सूद लिया जा रहा है, तो ये तो बिलइत्तफाक़ हराम है। और एक होता है रिबल फजल, कमी ज़्यादती के साथ बेचना, दो चीज़ों का आपस में मामला करना और उसको कमी पेशी के साथ बेचना। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, इसकी इल्लतें क्या हैं, इससे मुताल्लिक़ अहकाम और तफसीलात क्या हैं, तो आइमा किराम के यहाँ मुख्तलिफ हैं। इस सिलसिले में सूद जो है हमारे पास जो हराम है, तो हमारे पास उसकी इल्लतें अलग हैं, उसकी बुनियाद और उसके अहकाम अलग हैं। इमाम शाफी के यहाँ उसकी इल्लत अलग है, उसके अहकाम अलग हैं। इमाम मालिक और इमाम अहमद के यहाँ उसकी इल्लतें अलग हैं, उसके अहकाम अलग हैं। तो फरमाते हैं कि अगर ये तफसीलात अल्लाह के नबी खुद वाज़ेह फरमा देते तो हमारे लिए मज़ीद इत्मीनान हो जाता, ये उनकी ख्वाहिश थी। और वाक़ईतन इन मसाइल में इख्तलाफ सहाबा से रहा है फिर, और आज भी उम्मत में है और आज भी उलमा के दरमियान में है। हर मसलक के, हर नुक्ते नज़र के जो उलमा इकराम हैं अपने अपने एतबार से जो है ना मसाइल के अहकाम बयान करते रहते हैं। दूसरी रिवायत भी इसी मजमून की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम बुखारी ने नकल फरमाई है। उसके बाद जो दूसरा बाब है वो ये है, बाब माजा अफी मन यस्तहिल्लुल ख़म्र व युसम्मीहि बिग़ैरि इस्मिही। ये बाब उन लोगों के बयान में है कि जो शराब को हलाल करार देंगे और शराब के नाम के अलावा जो है ना उसका नाम रखेंगे, यानी कोई और नाम देकर जो है ना उसको पिएंगे लोग। इस बाब में जो रिवायत है, हज़रत अबू मालिक अशारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो फरमाते हैं कि समिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत सुनी है, ये बात सुनी है, लयकूनन मिन उम्मती अक़्वाम यस्तहिल्लून अल-हिरा वल-हरीरा वल-खम्रा वल-मआज़िफा। मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो ज़िना को हलाल समझेंगे, वल-हरीरा रेशम को हलाल समझेंगे, वल-खम्रा शराब को हलाल समझेंगे, वल-मआज़िफा गाने बजाने के आलात को हलाल समझेंगे, वलयंज़िलन्ना अक़्वामुन इला जंबि आलमिन यरूहु अलैहिम बिसारिहतिन लहुम। और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे कि जो पहाड़ों के किनारों पर क़याम करेंगे और उनके पास उनके चरवाहे जो है ना वो बकरियाँ वगैरह शाम के वक्त में ले जाएंगे, उससे वो लोग फ़ायदा उठाएंगे। यातीहिम यानी अल-फ़क़ीर लिहाजतिन, उनके पास फ़कीर आएंगे हाजत की वजह से, फ़यक़ूलूना इरजा इलैना गदा, तो वो लोग कहेंगे कि हमारे पास कल आ जाओ, फ़युबय्यिदुहुमुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको हलाक कर देंगे रातों रात, वयदाउल अलम और अल्लाह तबारक व तआला وَيَمْسَحُ الْآخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ। रातों रात अल्लाह तबारक व तआला उनको हलाक कर देंगे और हलाक करने के बाद दूसरे लोगों को, कुछ लोगों को तो अल्लाह तबारक व तआला हलाक कर देंगे और कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बंदर और खिंजीर की शक्ल में मस्क कर देंगे क़ियामत के दिन। या क़ियामत की अलामतों में से कुछ अलामतें हैं जो यहाँ बयान की गई हैं। एक तो ये है कि उम्मत के, यानी क़ियामत के करीब में कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाएंगे कि जो शराब को हलाल करार देने वाले होंगे। इमाम बुखारी यही कहना चाहते हैं। इस वजह से आज हलाल शराब निकल गई है, अमेरिका में तो आ रही है और भी जगहों पर शायद जो है ना इसका रिवाज आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। शराब पर हलाल का लेबल लगाकर बेचा भी जा रहा है, पिया भी जा रहा है, क्योंकि इतने फीसद अल्कोहल हो, इतने फीसद अल्कोहल नहीं है इसलिए हलाल है, फलाँ फलाँ जो भी है। बहरहाल ये चीज़ आ गई है उम्मत के अंदर। ऐसे ही आपने फरमाया कि भाई जिना को भी हलाल करार देंगे लोग, उसके लिए भी हीले बहाने ढूंढ लेंगे। इसलिए आज के ज़माने में जो है ना बाज़ हज़रात के यहाँ जो निकाह है मुता निकाह है मुवक्कत जो जायज़ है वो भी जिना ही की एक शक्ल है कि नाम उसका कुछ और दे दिया उन लोगों ने, वो हुक्म मंसूख हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाह है मुता यानी वक्ती तौर पर निकाह की चंद दिनों तक की निकाह करने की इजाज़त थी। सहाबा इकराम जगहों में होते थे, दूर होते थे, आप सल्लम के साथ गज़वात में होते थे, बाहर निकले हुए होते थे, वहाँ पर मसाइल उनके लिए पेश आते थे, तो हुज़ूर ने उनको इजाज़त दे दी थी कि भाई यहाँ पर ठहरे हुए हैं चंद दिन के लिए जो है निकाह कर लो, फिर बाद में छोड़ देना उनको। तो ये एक ज़माने में जायज़ था सहाबा इकराम की। वैसे भी उनकी उनका मकसद जो है ना वो शहवत परस्ती नहीं होता था, नफ्स परस्ती नहीं होता था, वाक़ईतन जो है ना उनके लिए ये मसाइल पेश आते थे जिसमें जो है ना तबीयी तकाज़ों का पूरा करना भी मकसद होता था और शरीय तकाज़ों में जो है ना हरज ना हो, इसलिए सहाबा इकराम का मंशा तो यही होता था कि शरीयत के जो है ना तकाज़ों के अंदर कोई कोताही वगैरह और तसाउल ना हो सके। लेकिन अब यहाँ तो ये चीज़ बुनियादी बन गई इनके लिए, तो वक्ती तौर पर निकाह के जायज़ होने का कायल है। तो वक्ती तौर पर निकाह का जायज़ होना और जिना ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एक दिन के लिए कोई निकाह कर ले, निकाह मुअक्कत के तौर पर, निकाह मुता के तौर पर, 10 दिन के लिए निकाह कर ले, 1 महीने के लिए निकाह कर ले, तो जिना ही की सूरत है। और उम्मत में एक फ़िरका एक तबका ऐसा है जो इसको जायज़ करार देता है। बहरहाल इसके अलावा भी हलाल होने के जो है ना बहुत सारे आदमी तरीके ढूंढ लेता है। फिर रेशम को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रेशम भी जो है ना वो लोग जो है उसको हलाल समझकर जो है इस्तेमाल करेंगे। और गाने बजाने के आलात भी हैं, मौसीकी भी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा आम हो गई है। ये अब तो मौसीकी जो होती है गाने ये सब नातों में भी आ गए हैं, हमदों के अंदर भी जो है ना ये मौसीकी शुरू हो गई है, म्यूज़िक्स वगैरह ये सारी शुरू हो गई, तबले बजते हैं और पता नहीं अलग अलग किस्म के सुरों की आवाज़ें जो है ना ये चल रही होती हैं और हम सुन भी रहे हैं वही लगा कर। एहतियात करना चाहिए इससे, बल्कि बनाने वालों के लिए जो है बाज़ दफ़ा शक और शुबा पैदा होता है ईमान के सिलसिले में कि भाई ईमान तो रहता है ये नहीं रहता कि भाई ये कुरान की और नातों की तौहीन ही है, इसके साथ ये म्यूज़िक लगा दी जाती है जो कुरान में सरी यानी अहादीस में सराहतन हराम इसको करार दिया गया। अब कैसे नात रसूल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदाह के साथ उन चीज़ों को आप मिलाकर जो है ना नशर कर रहे हैं या उसको उम्मत में फैला रहे हैं कि जो हुज़ूर ने खुद फरमाया कि ये हराम है, हुज़ूर की मदाह हो रही उसी चीज़ के साथ जिसको अल्लाह के नबी ने हराम करार दिया। कभी आपने गानों की आवाज़ नहीं सुनी, म्यूज़िक की आवाज़ नहीं सुनी, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इंतज़ाम यह हो जाता था कि अगर कभी ऐसा मौका हो जाता था कि जो शरीयत में जायज़ ना हो तो खुदा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपकी इस्मत का इंतज़ाम हो जाता था, वहाँ पर आप महफूज कर दिए जाते थे। बाद मजलिसों में आप सल्लम चले गए तो नींद लग गई आपको, जाने लगे गाने बजाने की आवाज़ जैसे ही आना शुरू हुई तो आप सल्लम के तबीयत भी यानी बार दफ़ा तो ये है कि एक जगह आपने क़याम फरमाया नींद आपको लगी, इस तरह का कुछ वाक़ा पेश आया कि आप शरीक ही नहीं हो सके उसके अंदर, हालांकि जिस मजलिस में जा रहे हो जिस मजलिस में जाना चाहते थे उसके अंदर ये चीज़ पाई जाती थी, गाना बजाना हो रहा था उसके अंदर। तो बहरहाल जो चीज़ें अल्लाह के नबी ने हराम करार दी और कभी इस्तेमाल नहीं की और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिफाजत का इंतज़ाम होता था, वो चीज़ें आज हम लोग नातों में इसमें उसमें लगा कर इस्तेमाल करते हैं, सुनाते भी हैं, घरों में लगाते भी हैं। तो फरमाया कि उम्मत में एक वक्त ऐसा भी आएगा। उसके बाद फरमाया कि कुछ लोग वो होंगे जो पहाड़ों के दामनों में पहाड़ों के किनारों पर रहने लगेंगे और चरवाहे जो है ना जानवर चरा कर उनके पास लेकर आएंगे, यानी आयश के लिए दूर दराज निकल जाएंगे और अपनी राहतों के लिए किसी एक जगह इस तरह की जगहों में क़याम करने लगेंगे। उनका मकसद जो है ना वो सिर्फ तायुश होगा, आयश यानी आयश वाली ज़िंदगी गुजारना है। ये भी सूरतें हैं आज के ज़माने में पाई जाती हैं, यानी थोड़ा सा आप सबब वगैरह में दूर दराज इलाकों में चले जाएँ तो अपने अपने दूर यानी बिल्कुल तनहाई को पसंद करते हैं, वहाँ पर भी अपने जानवर खुद चल रहे होते हैं, वहाँ पर अगर कोई जाए तो मुलाकात नहीं करते। आप सबने फरमाया कि ऐसा होगा कि अगर फ़कीर उनके पास ज़रूरत के लिए चला जाएगा तो वो कहेंगे कि आज बताओ कल आना, यानी टालने के लिए वो कहेंगे, इस वजह से नहीं कि भाई वाकई तो उनके पास नहीं। फिर फरमाया कि ये लोग ऐसे होंगे कि इनकी बुख्ल की वजह से और सही हकूक़ के अदा न करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इनको हलाक कर देंगे और खिंजीर और बंदरों की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला इनको बना देंगे, यानी उम्मत में मजमू एतबार से ये हालात आ जाएंगे और यही सब कुछ उनके लिए हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये चीज़ें उनके लिए हलाल हो जाएंगे, फिर अलग अलग रहेंगे तो गाना बजाना भी उनके लिए है, शराबे भी उनके लिए हैं, रेशम भी उनके लिए है, जिना भी जो है ना जाहिर सी बात है कि जब आदमी इतनी सब चीज़ें कर रहा है तो जिना भी उसके लिए बहुत आसान है। तो फरमाया कि उम्मत में जब ये चीज़ें आम हो जाएंगी तो खिंजीर और बंदरों की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला बना देंगे। علماء نے لکھا ہے کہ ایک مطلب تو اس کا یہی ہے کہ واقعات صورتیں مسخ کر دی جائیں گی, جیسا کہ بنی اسرائیل کے بعض اقوام میں اللہ تبارک, بعض لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب نازل فرمایا. بعد نے فرمایا کہ یہاں مسخ سے جو ہے حقیقی مسخ مراد نہیں ہے, بلکہ مسخ کرنے سے مراد دلوں کا مسخ کر دینا مراد ہے, اخلاق کو برباد اور تباہ کر دینا مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاق بگاڑ دیں گے, مومنوں جیسے اخلاق ان کے نہیں ہوں گے, بندروں جیسے اخلاق ان کے اندر پیدا ہو جائیں گے, خنزیر جیسے اخلاق ان کے اندر پیدا ہو جائیں گے. یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آج کے زمانے میں یہ صورت حال پائی جاتی ہے, بندر کا مزاج اور بندر کی طبیعت میں ہر سے زیادہ ہوتی ہے. جو لوگ بخیل بہت ہوتے ہیں یہاں کے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ مزاج میں ہر بہت زیادہ ہوتی ہے, لالچ بہت زیادہ ہوتی ہے, بندروں کا وصف ہے. دوسرا ہے کہ خنزیر میں بے حیائی ہوتی ہے, تو بے حیائی کا وصف ان کے اندر ہے. یہاں اگر آپ غور کریں گے تو حدیث کی یہ پانچ چیزیں یہ پوری کی پوری ان کے اندر پائی جاتی ہیں. یہاں پہ زنا ہے, ان کے لیے حلال کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مگر شادی شدہ جو ہے نا زندگی گزارتے ہیں, پوری زندگی گزارتی ہے, اولاد در اولاد, پوتے پوتیاں, نواسے نوازیاں, سب کچھ ہو رہے ہوتے ہیں, گانے بجانے ہیں وہ بھی ہیں, شراب ہیں وہ بھی ہے, اسی طریقے پر حرام ریشم ہے وہ بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور دور دراز پہاڑوں میں جا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں, شہر سے دور چلے گئے. بلکہ اب آہستہ آہستہ امت کا حال یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان طبقہ بھی آہستہ آہستہ یہاں کے شہر کے شور سے, لوگوں سے بچنے کے لیے, صاف ستھری اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے آہستہ آہستہ سبب منتقل ہو رہا ہے کہ بھائی لوگ ہمارے قریب نہ آئیں. یہ ہے, حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھائی آج, یعنی ظاہر سی بات ہے کہ انسان خود تنہا اپنی زندگی گزارنے کے لیے, اپنے تعیش کے لیے, اپنی راحت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. قرآن میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو مقصد بتایا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کی بندگی بھی کرے, ساتھ میں رہتا, یعنی تم خیر امت اخریت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, اس کے اوپر دوسروں کی ذمہ داری بھی ڈالی گئی. صورت حال یہ ہے کہ ہم راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے علیحدہ کہیں اور بسنے کی فکر میں ہیں. ایک مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ فریدوں کو آپ چھوڑنے والے ہو جائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے آپ کے اولادوں کی تربیت کیسے ہوگی, پھر آپ کے لیے مسجد کہاں پر ہوگی. پورے سبق میں آپ کو ایک مسجد نہیں ملے گی وہاں جا کر رہ رہے ہیں آرام سے, وہاں اس محلے کے اندر نہ مدرسہ ہے, نہ وہاں آس پاس کے لوگ مسلمان ہیں, کئی لوگ, یعنی ایک ایک گھر, دو دو گھر, چار چار گھر آپ کو ملیں گے مسلمان ہونے کے, آس پاس میں کوئی اور نہیں ملے گا. پوری بستی میں کوئی آپ کو مسلمان نہیں, کوئی مدرسہ نہیں ملے گا, کوئی مسجد نہیں ملے گی, کوئی مسلح نہیں ملے گا, راحت کے لیے سکون کے لیے جا کر بس رہے ہیں. حالانکہ شریعت کا جو مزاج ہے, شریعت کا جو منشا ہے, جو ہدایات ہے, وہ یہ ہے کہ مسجدوں کے قریب ہونا چاہیے لوگوں کے گھر, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آئیں, آباد کریں. اب اس کے بعد ان کی صورت حال یہ ہو جاتی ہے کہ بھائی نہ ان کا مسجد سے تعلق, نہ ان کے اولادوں کا مسجد سے تعلق, نہ دینی ماحول ان کے پاس ہے, نہ دینی مزاج ان کے پاس ہے. اور چند دنوں کے بعد جو ہے نا ساتھ میں رہ رہ کر جو ہے نا حالت یہ ہو جاتی ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا بھی ختم, دینداری بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے. پھر جب ان کی اولاد بڑی ہوگی تو اس وقت جو ہے نا صورت حال بالکل بدلی ہوئی ہوگی. پھر جب ان کے والدین کا حال یہ رہا تو اولادوں کا حال بھی ظاہر سی بات ہے کہ یعنی بدتر ہو جائے گا ان سے. پھر ان کی اولادوں کے اولادوں میں جو ہے نا ایمان جو ہے نا ملے گا نہیں ملے گا, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. پھر آپ ملاقات کے لیے جائیں گے تو پہچانیں گے نہیں. پھر آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا تو خنزیروں کی شکل میں, بندروں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیں گے, یا پھر ان جیسے اخلاق ان کے اندر پیدا فرما دیں گے. تو اخلاق کی یہ تبدیلی جو ہے نا آج ہمارے یعنی ہم کو دیکھنے میں تو آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں علماء کے بقول یہ صورت حال میں پیش آ جائے گی کہ خنزیروں کی شکل میں بنا دیے جائیں گے. حقیقت میں تو وہ کب ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد ہے باب الانتباہ فی الاوعیہ والتوری, سامانوں میں, برتنوں میں اور طور میں نبیذ بنانے کا یہ باب ہے, یعنی جن برتنوں میں نبیذ بنائی جاتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان فرما رہے ہیں. نبیذ یعنی وہی پانی جو کھجور, یعنی پانی میں کھجور ڈال کر چھوڑ دیا جاتا ہے, یا انگور ڈال کر چھوڑ دیا جاتا ہے, یا کشمش ڈال کر چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ پانی نبیذ کہلاتا ہے. کہ جب تک نشہ نہ ہو اس کا پینا جائے, اور اس سے تقویت ہوتی ہے, جسم میں قوت ملتی ہے. تو صحابہ کرام کی زمانے میں عام تھی یہ چیز, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا ہے, آپ کو بھی دیا جاتا تھا, صحابہ اکرام دیتے بھی تھے. تو یہاں روایت اسی مضمون کو بتاتی ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت صالح بن سعد کہتے ہیں کہ اتا ابو اسید الساعدی, کہ ایک مرتبہ ابو اسید آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اپنی شادی کے سلسلے میں, یعنی شادی کی وجہ سے شاید بلایا اللہ کے نبی کو. فکانت امرأته خادمہم وہی العروس, اور ان کی بیوی جو ہے نا اس وقت خدمت کر رہی تھی, ان کی طرح حال ہے کہ وہ دلہن تھی, دلہن ہو کر خدمت کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی. قالت, تو وہ فرماتی ہیں کہ اتدرون ما سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اللہ کے رسول کو میں نے کیا پلایا. پھر فرماتی ہیں کہ انقعت له تمرات من اللیل فی دور, کہ میں نے جو ہے نا اللہ کے نبی کے لیے رات ہی سے کچھ کھجوروں کی نبیذ بنا دی تھی طور میں, तौल जो है ना बर्तन को कहते हैं कि जो पीतल से लकड़ी से लोहे से वगैरह से बनाया जाता है। तो उस बर्तन में मैंने अल्लाह के लिए नबीज बना दी थी और हुजूर का वो पेश कर दिया उन लोगों ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पी भी लिया। तो मुख्तलिफ बर्तनों में उस वक्त लोग नबीज बनाया करते थे। बाज़ बर्तन वो थे जिसमें नबीज बनाने से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जिसका बयान इससे पहले आया था। यानी एक तो वो था कि खजूर की जो जड़ होती थी उस जड़ की यानी उस लकड़ी को निकाल कर उसमें नबीज बनाते थे वो लोग, तो उसमें नबीज बनाने से हुजूर ने मना फरमाया था। खजूर का कद्दू का गूदा निकाल कर कद्दू में नबीज बनाते थे, उससे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था। और जिन बर्तनों पर जो है वो ऑयल यानी तारकोल वगैरह की जो है ना पॉलिश हो जाती थी, या ऑयल के जरिए पॉलिश कर देते थे, जिसके अंदर बाहर की चीज़ यानी अंदर की चीज़ बाहर रिस कर नहीं जाती थी, तो उनमें नबीज बना अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया था। और एक हरे किस्म का घोड़ा घड़ा होता था उस ज़माने में, उसमें भी नबीज बनाई जाती थी, अल्लाह के नबी ने उससे भी मना फरमा दिया था। तो वजह यह थी कि उनमें जल्दी नशा पैदा हो जाता था, और अगर पता ना हो आदमी को तो शराब पी लेगा वो, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबीज ही बनाने से मना फरमा दिया था। तो फरमाते हैं कि कुछ बर्तन तो वो हैं जिसमें अल्लाह के नबी ने नबीज बनाने से मना फरमाया, और कुछ वो हैं जिनमें इजाज़त भी दी थी, जिनमें नशा जल्दी पैदा नहीं होता था। तो बहरहाल नशे से पहले अगर उसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो शरीयत में उसकी इजाज़त है। अच्छा, जिन बर्तनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मना फरमा दिया था नबीज बनाने से, बाद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी थी। इब्तदा में शराब की नहुसत और शराब की कबाहत दिलों में बिठाने के लिए सख्ती के साथ हर चीज़ को हराम करार दिया। ये बात इससे पहले आई है ना कि शराब के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 लोगों पर लानत फरमाई है, पीने वाले पर, पिलाने वाले पर, बनाने वाले पर, लाने वाले पर, वगैरह वगैरह 10 का नाम लेकर हुजूर ने लानत फरमाई कि अल्लाह की लानत हो उन पर। बड़ा सख्त जो है ना, बड़ी सख्त, बड़ी ख़राब चीज़ है। तो उस ज़माने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बर्तनों में शराब बनाई जाती थी उमूमन उनसे भी मना फरमा दिया था, ताकि इसके कबाहत दिलों के अंदर बैठ जाए कि ये इंतहाई ख़राब चीज़ है, इस्तेमाल की चीज़ नहीं है ये, और ये कामिल ईमान की अलामत भी है, निशानी भी है। एक है गुनाह से बचना और एक है गुनाह की कबाहत का दिल में आ जाना। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र फरमाया कि वकर रहा कुफर, ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है कि कुफर की, फिस्क की और इसियान की कराहत दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा दी। आज हम में ऐसे बहुत सारे गुनाह हैं कि गुनाह तो हैं और हम समझते भी हैं, लेकिन उसकी कराहत हमारे दिल में नहीं पाई जाती। हम जानते हैं कि गुनाह है, हम जानते हैं कि सज़ा है, हम जानते हैं कि इस पर अल्लाह की तरफ से वाइद है, जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, लेकिन उसकी उसका असर इतना नहीं है, उसकी कराहत इतनी नहीं है हमको कि हम उससे बच सकें। ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि भाई ये कामिल रुश्द हिदायत वालों की अलामत है कि भाई गुनाह की नमोसत और गुनाह की कराहत उनके दिलों में बैठी हुई होती है, कामिल ईमान की अलामत है, ये होना भी चाहिए। तो आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अगले बाब में उसी मजमून की रिवायत का जिक्र फरमाया है कि जिन बर्तनों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में मना फरमाया था, बाद में उन बर्तनों में नबीज बनाने की रुख्सत दे दी थी। तो इसलिए हमारा मौकफ यही है कि अब कोई बर्तन ऐसा नहीं है जिसमें नबीज बनाना जो है ना मना हो। बाद अइमा के नज़दीक अभी भी बाज़ बर्तनों में नबीज बनाना मना है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनको मंसूख हो गया। तो अगले बाब में तकरीबन यही मजमून की रिवायत है, बाब तरखीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल औइयत व ज़ुरूब बाद नहीं। ममानात के बाद बर्तनों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रुख्सत दी है उनका ये बयान है। इसमें हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इसी तरीके पर हजरत अब्दुल्लाह बिन आमिर की रिवायात हैं, इसी तरीके पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायात हैं, और भी सहाबा की रिवायात हैं, जिनका मजमून ये है कि बाज़ बर्तनों में अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी थी और मना फरमा दिया था, तो बाद में जो है ना उनने रुख्सत भी दे दी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल के सही इल्म और सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए।